ओंकार का जप 19 प्रकार की दिव्यताओं को भीतर से जागृत करता है और ओंकार के जप से हमारा शिव नेत्र जहाँ तिलक करते हैं इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। आज्ञा चक्र का एकाग्रता होने से सात्विक प्रकाश जागृत होता है। ऐसे न नमः शिवाय में न शब्द का रंग और मणिपुर केंद्र विकसित होता है, लाल रंग जागृत होता है और नमः का मां से बैंगनी रंग जागृत होता है, स्वाधिष्ठान केंद्र विकसित होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र के जप से हर्ष जप करते तो पाप नाशिनी शक्ति पैदा होती। कोई भी गुरु मंत्र जैसे हरिओम हरिओम हरिओम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गुरु ओम गुरु, तो जो जल्दी जल्दी जप कर किया जाता है उसको हर्ष जप बोलते हैं। उसे पाप नाशिनी शक्ति वृत्ति स्पंदन ऊर्जा जागृत होती है। अगर हम दीर्घ जप करते हैं जैसे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, दीर्घ जप कार्य साफल्य अथवा हरि ओम तो कार्य साफल्य शक्तियां हमारे अंतःकरण में और हमारे केंद्रों की योग्यताएं कार्य साफल्य वाली देते। अगर हम प्लूत जप करते हैं दीर्घ के बाद प्लूत लंबा हरी ओम अथवा ओम, उतनी देर ओमकार को नाभि उधर शिव नेत्र में देखेंगे तो प्रकाश जागृत होगा। नमः शिवाय, तो ओमकार के अ से लेकर आखिरी म के बीच हमारा मन कितना भी बाहर भटकने वाला होगा तो उस समय उस आत्म शिव में एकाकार रहेगा। जैसे ओ मन कहीं नहीं जाएगा, उस चैतन्य की एक तांता रहेगी। ओ बोलो तो ओ, लंबा सांस लो ओ, आखिरी में मां बोलते समय होठ बंद हो जाए। ऐसा अगर 15 मिनट रोज जप करते हैं नहा धोकर पूर्व अथवा उत्तर के तरफ, तो थोड़े ही समय में आपकी सद्प्रेरणाएं और भाग्य की रेखाएं और विचार और पालिनी शक्ति, 19 प्रकार की शक्तियां जो सुषुप्त पड़ी है, रक्षणी शक्ति, गति शक्ति, कांति शक्ति अर्थात उज्जवल आभा मंडल इधर होने लगेगा। प्रीति आपके हृदय में, बाहर से सुख लेना अथवा और कोई मुझे प्रेम करे नहीं, आप प्रेम स्वरूप होने लगेंगे। आपके अंदर परमात्मा प्रेम प्रकट होने लगेगा। आप दूसरों के नाच गाने से सुखी होने वाले साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे। आपकी प्रीति शक्ति जगती है ऐसी उपासना से, तो आपको देखकर सबके अंदर का प्रेम स्वरूप परमात्मा चेतना उल्सित होने लगेगी। प्रीति शक्ति, और उस प्रीति शक्ति से संतुष्टि तृप्ति होगी। अगर आपको तृप्ति नहीं मिलती तो आप घंटों भर हमारे लिए इंतजार नहीं करते और हमारे आने के बाद घंटों भर आप नहीं बैठते। आपको घर में जो सुविधा, अपने ऑफिस, घर, दुकान में जो सुविधा है, वैसी सुविधा किसी समय भी यहाँ नहीं हो सकती। फिर भी उन सब सुख सुविधाओं को लताड़कर आप बैठने की जगह भी धरती पे और असुविधा वाली सारी सुविधाओं को छोड़कर असुविधाओं के बीच भी आपको इस आध्यात्मिक वातावरण की तृप्ति शक्ति आपको संतोष दे रही है, पुण्य दे रही है और कुछ नवीनता जीवन में आंतरिक संतोष ला रही है। ये ओमकार की तृप्ति शक्ति है। छठी होती है अवगमन शक्ति, मनोभावों को जानने वाली शक्ति को अवगमन शक्ति बोलते, ये भी जागृत होती है। सातवीं होती है प्रवेश अवंती शक्ति, सर्व अंतःस्युत अर्थात सबके अंतःकरण की गहराई में आपकी चेतना, आपका संकल्प प्रविष्ट हो जाएगा। आठवां होता है श्रवण शक्ति सूक्ष्मतम, और नौवां होता है सामर्थ्य शक्ति अर्थात नियामक शासक शक्ति। लट्ठी और टीयर गैस नहीं, आपकी उपस्थिति से, आपकी दृष्टि से हजारों लाखों आदमी के चंचलता पर शासन करके आप उनकी उन्नति करने में समर्थ हो जाएंगे। ऐसी ये आत्मशक्ति जागृत होती है। दसवीं होती है याचन शक्ति प्रार्थनीय प्रदाता, आपसे कोई प्रार्थना करता है, याचना करता है, आपके शुभ संकल्प से उसका मनोरथ देर सवेर पूरा हो जाए। ग्यारहवीं होती है क्रिया शक्ति, निरंतर क्रियारत रहने पर भी आप अपने को करता या थका या परेशान नहीं पाएंगे। बारहवीं होती है इच्छित शक्ति अवंती, स्वयं निष्काम होते हुए भी शुभ इच्छा प्रकाशक, दूसरे की सद्कामनाओं को आप पूर्ण करने में समर्थ हो जाएंगे। तेरहवीं होती है दीप्ति शक्ति अर्थात अंधकार नाशक, ज्ञान का प्रकाशक मति हो जाएगी। चाहे फिर आप तुकाराम की नाई कम पड़े हों, कबीर और मेरे नाई कम पड़े हों, अथवा विवेकानंद की नाई ज्यादा पड़े हों, रामतीर्थ की नाई, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ज्ञान प्रकाशक शक्ति से सब उन्नत उन्नत होने लगते हैं। चौदहवीं होती है व्यापिनी शक्ति, आपकी दृष्टि जहाँ तक पड़ी उन्हीं लोगों को आप अपने स्नेह से व्यापते हुए, जैसे आकाश व्याप रहा है अथवा माँ का स्नेह बालक पर व्याप जाता है, ऐसे हजारों लाखों पर आपकी व्यापिनी शक्ति भगवत सत्ता व्याप जाएगी। इसीलिए बोलते संत का दर्शन पाप नाशक होता है। कबीरा दर्शन संत के साहिबावे याद, एक घड़ी आधी घड़ी आधी। पंद्रमा होता आलिंगनी शक्ति, अर्थात आप दूर होते हुए भी आपकी हाजिरी मात्र से आप सबको अपने अंतर्भाव से मानो मिले मिलाए और अपनापन एहसास कराएंगे। सोलहवीं होती हिंसा दुष्ट दमन शक्ति, अर्थात अज्ञान नाशक और दुष्ट को आपकी हुंकार मात्र से दुष्ट का प्रभाव और दुष्ट का आक्रमण नियंत्रित करने की। ग्यारहवीं होती है दान शक्ति पुष्टि, आप दूसरों की बुद्धि को ज्ञान दान कर सकते, शांति और सफलता दान कर सकते। अठारहवीं होती है भोग शक्ति, प्रलयकाल स्थूल जगत लीन करके आप आत्म भोग में आत्म संतोष में रह सकते हैं, दूसरों को कर सकते। 19वीं होती है वृद्धि शक्ति, प्रकृति का संवर्धक और संरक्षक, ये तो ओमकार की इस प्रकार उपासना करने वाले, इस ओमकार की अलग अलग ढंग से उपासना करने वालों को अलग अलग प्रकार के फायदे भी होते हैं। जैसे 120 माला जप किया और खीर गाय के दूध की खीर बनाकर सूर्य नारायण को भोग लगाया, 120 माला जप किया पौने चार घंटे में हो जाती है। उन दिनों में आपने संयम बरता, पति पत्नी अलग रहे, ब्रह्मचर्य रखा और कम बोला, नीच कर्मों का त्याग कर दिया, तो 7 सप्ताह तक मतलब 49-50 दिन तक का ये अनुष्ठान आपने किया तो आपके घर की दरिद्रता क्षीण होने लगेगी, आय का सुंदर साधन खुल जाएगा और बरकत होने लगेगी। अगर 1 साल के लिए आप ओमकार की उपासना करते हैं तो परमात्मा निर्गुण निराकार शांत सोहम स्वभाव जो है आपका जागृत होगा, परमात्मा की प्राप्ति की तड़प होगी तो परमात्मा प्राप्ति भी हो जाएगी। अगर आप 10 माला ही जपते हैं 1800 बार तो आपको फिसलने की कई जगह आएगी, फिर भी आपके इष्ट मंत्र जप वाली माला और इष्ट के जप के प्रभाव से आपकी पुरानी मानसिकता, पुरानी दुर्मति, पुरानी दुर्वासनाएं इतना जोर नहीं मारेगी जितना निगुरे आदमी के ऊपर जोर मारती है। आप कभी कभार फिसलेंगे भी, गलती करेंगे, लेकिन अगर दीक्षा नहीं लिया होता तो गलती को ही जीवन बना देते, लेकिन दीक्षा के बाद गलती आपको दिखेगी और आप उसको हटाने में लगेंगे। फिर आपको सत्संग में भी रुचि होने लगेगी, सत्कर्म भी आप ढूंढने लगेंगे और सत्कर्म आपका कर्म योग बन जाएगा, आपकी भक्ति भगवान के रस को प्रकट करके भगवताकार वृत्ति बनाएगी तो आपका भक्ति योग होने लगेगा। अगर आपकी तड़प तीव्र है और गुरु समर्थ है तो आपको गुरु जी बोलेंगे कि तुम जिस परमेश्वर को खोजना चाहते हो तो कौन सा परमेश्वर, 2 हाथ पैर वाले भगवान अथवा चतुर्भुजी भगवान अथवा अष्टभुजाधारी प्रकृति स्वरूपी जगदम्बा भगवती, आप कौन सा भगवान चाहते हैं? अगर जिस भगवान की आकृति आपने ठान ली है तो गुरु जी कहेंगे कि वो भगवान आएंगे और फिर वो अधिक कृपा करेंगे, तो ये प्रचेताओं को कहा भगवान नारायण ने कि तुमको देव ऋषि नारद का सत्संग मिलेगा, और भगवान शिव जी ने वशिष्ठ जी को कहा कि वो परमात्मा देव की जो तुम उपासना पूछते हो वो परमात्मा देव वास्तव में कौन है और कैसे मिलता है वो ध्यान से सुनो। ये बात वशिष्ठ जी राम जी को सुनाते हैं, शिव जी वशिष्ठ को सुनाते हैं, और यही बात मैं तुमको कहता हूं। अगर साधक उन्नत होता है तो इस प्रकार के ज्ञान को सुनते सुनते जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में हाथी चिंखाड़ रहे हैं, घोड़े हुंकार रहे हैं, शत्रु सेना के योद्धा एक दूसरे से प्रतिशोध की आग में खून के प्यासे हैं, ऐसे माहौल में भी तत्व ज्ञान ने अर्जुन का संदेह निवृत्त किया, शोक और भय निवृत्त किया और अर्जुन तृप्ति का अनुभव करता है। युद्ध जैसा घोर कर्म करते समय भी अर्जुन को बाद में पाप नहीं लगता, क्योंकि अर्जुन का कर्तृत्व ब्रह्म ज्ञान की अग्नि से जल गया है। अर्जुन ने कहा कि आप तो बोलते हो कि कर्म मात्र बंधन है, फिर मेरे को युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों प्रेरित करते हो? तो बोले, ये क्षत्रिय का कर्तव्य मिला और कर्तव्य के आगे तुम मोह वश घुटने टेक रहे हो। पहले साधु होकर ईश्वर प्राप्ति का भाव होता तो अलग बात है, लेकिन अभी मित्र कुटुंबी स्नेहों को देखकर मोह में आकर अपना कर्तव्य छोड़ता है तो पाप लगता है। और ये जो भी स्नेही और अपने लग रहे, न जाने कितने कौन से कितने जन्म में अपने हुए, कितने जन्म में पराए हुए। वास्तव में अपने आप को तुम खोज लो तो तुमको लगेगा कि अपने और पराए सब का आधार एक सत्ता है। जैसे सभी मटकों का आधार आकाश है अंदर और बाहर, ऐसे सभी और अपने और परायों का आधार चिदाकाश परमात्मा है। तो इस प्रकार की ऊंची मति गति होगी और गुरु जी ज्ञान बताएंगे तो आप मैं कौन हूँ, दुख को सुख को ईश्वर को चाहने वाला, दुख से भागने वाला, सुख को थामने वाला, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, खोजते 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 आप जिसको कभी नहीं छोड़ सकते और जो कभी आपसे दूर नहीं जा सकता, ऐसे शिव स्वभाव में आपकी स्थिति हो जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगा। इसी को बोलते ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। तो पूर्ण गुरु भगवान शिव हैं, भगवान राम हैं, कबीर जी, नानक जी, भगवान लीला शाह जी आदि पूर्ण गुरु अगर मिल जाए इस प्रकार के, तो आपका जीवन मरने के बाद ईश्वर प्राप्ति नहीं, अथवा कोई आ जाए ईश्वर चार भुजा वाला दो भुजा वाला, वो ईश्वर प्राप्ति छोटी है। ईश्वर जिससे ईश्वर है वो आत्मा ईश्वर की आपको प्राप्ति हो जाएगी। उस प्राप्ति के आगे दुनिया की स्वर्ग नरक की प्राप्ति कोई माना नहीं रखती है। तो अब भगवान राम जी को वशिष्ठ जी सुना रहे हैं कि मैं हिमालय में गंगा किनारे एकांत में साधना तपस्या करता था। तपस्या का मतलब समझ लेना, एक साधारण व्यक्ति होते हैं जो नंगे पैर चलते हैं, भुखामरी करते हैं, शरीर को कष्ट देने वाले नियम पालते हैं, उसको शारीरिक तप कहा जाता है। दूसरे जो है मन से किसी का बुरा नहीं कहते, किसी को दुख नहीं देते और मन से जप आदि करते हैं, प्राणायाम आदि जप आदि करते हैं, ध्यान आदि, वो मानसिक तपस्या है। और तीसरे तत्व ज्ञान का विचार करके आत्म विश्रांति, आत्म प्रीति और आत्म ज्ञान में लगते हैं, ये बौद्धिक नहीं आत्मिक तप है। तो वशिष्ठ जी महाराज उच्च प्रकार का तप करने वाले वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि मैं हिमालय में तप कर रहा था और शाम के समय अपने शिष्यों को वैदिक ज्ञान का सत्संग देता था। एक दोपहरी को हम बैठे थे, मेरे पास अरुंधति बैठी थी और हम आकाश में देख रहे हैं कि एकाएक प्रकाश पुंज सा का हमने गौर से देखा तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो माँ शिव पार्वती, माँ पार्वती और शिव जी कृपा करके इधर को पधार रहे। हमने मन ही मन उनका प्रणाम अभिवादन अर्घ्यपाद पूजन किया और आसन लगाया और वे आए, उनको आसन दिया और अर्घ्यपाद से उनका पूजन किया। चरण धुलाना, हाथ पैर धुलाना, कुल्लादि करवाना और पत्र पुष्प आदि से उनका पूजन करना और खान पान की भोग लगाने की चीज देना, ये अर्घ्यपाद पूजन किया। तो शिव जी ने हमारा कुशल पूछा कि मुनीश्वर
तुम्हारी तपस्या तो ठीक चल रही है ने? साधारण आदमी पूछते, लोभी आदमी पूछते कैसा है धंधा पानी, मतलब रुपए पैसे तो ठीक कमा रहे हो ने? मोही पूछता है कैसे हैं बाल बच्चे, और देहाध्यासी पूछता है कैसी है तबीयत, और भगवान का भक्त संत और भगवान पूछते हैं कैसी है तपस्या, तुम्हारी मन वृत्ति सम तो है ना, शांत तो है ना, ध्यान भजन में आत्मिक रस तो आता है ना, ये सब पूछना ये बहुत उन्नत प्रश्न है, उन्नत कुशल क्षेम पूछना है। कैसी है तबीयत बहुत नीच बात है। तय कैसी है तबीयत मतलब हाड़ मांस वात पीत कफ लीट थूक बैलेंस है कि अनबैलेंस हो गई है। तबीयत कैसी का मतलब ये वात पीत कफ आम तुम्हारा बराबर है, सप्त धातु सप्त रंग का रिदम ठीक है कि गड़बड़ है। शिव जी ऐसी ऊंची कुशल क्षेम पूछते हैं कि मुनीश्वर कैसी है तपस्या, तुम्हारी चित्त वृत्ति तो शांत है ना, अपने स्वरूप का अनुसंधान तो है ना, और यहाँ गंगा जी तुम्हें शीतल जल देती होगी, वृक्ष लताएं फल फूल आदि देते होंगे, कुबेर के अनुचर यक्ष तो आपको यहाँ विघ्न तो नहीं करते ना? तब मैंने कहा हे शंभ सदाशिव, एक बार भी जो नमः शिवाय कह देता है तो उसका ज्ञान नेत्र और भीतर के केंद्र विकसित होकर संतुलन होने लगता है। तो उन्हें आपूर्ति किस बात की, सब पूर्ण है भोलेनाथ, गंगा जी जल भी देती है, तमाल वृक्ष आदि फल भी देते हैं फूल फल, और मैं आनंद से अपना साधन भजन करता हूँ। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, माँ पार्वती को आप संकेत करें तो वो अरुंधति से मिलकर सत्संग करें, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्धिमती पार्वती जी तुरंत अरुंधति के साथ चली गई। भाइयों भाइयों के प्रश्न उत्तर में एक रंग अलग होता है, माई और भाई के बीच में प्रश्न उत्तर फिर बौद्धिक ऊंचाइयों को छोड़कर मानसिकता में आ जाते। स्त्री का जीवन और स्त्री का स्वभाव मन प्रधान होता है, और पुरुष का जीवन विवेक और बुद्धि प्रधान होता है, स्त्री का जीवन भाव और प्रेम प्रधान होता है। तो भावना अपनी दुनिया में, तो भाव का भी विकास हो और विचार का भी विकास हो, मन का भी विकास हो, बुद्धि का भी विकास हो, श्रद्धा का भी विकास हो और ज्ञान का भी विकास हो। अकेली श्रद्धा अवांछनीय कल्पनाओं में अवांछनीय भावनाओं में फंस सकती है। जैसे आज शिवरात्रि है तो कई जगह आप शंकर बम भोले करके कोई सुल्फे खींचने लग जाता तो कोई भांग घोटने लग जाएगा, तो कोई पागलों के नए भांग पी गए करता रहेगा। तो ये श्रद्धा तो है उनको, लेकिन अवांछनीय भावनाओं में अवांछनीय प्रचार में वे फंस सकते हैं। तो श्रद्धा के साथ प्रज्ञा का विकास होना चाहिए। बुद्धि में प्रज्ञा में और प्रतिभा में क्या फर्क है? तो बुद्धि प्रज्ञा प्रतिभा भगवत प्रसाद या बुद्धि तत्व प्रसाद या बुद्धि ये सब समझना चाहिए तो बहुत जल्दी से दुख सदा के लिए मिट जाते हैं और पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। बुद्धि तो सामान्य व्यवहार में सभी के पास है और वो तीन प्रकार की होती है, तामसी बुद्धि, शराब कबाब पान मसाला जुआ आदि, और बड़ों की संतों की भक्तों की मजाक उड़ाने वाली तामसी बुद्धि होती है, वो पापों को अर्जित करती है। राजसी बुद्धि अनर्थ कारिणी होती, इधर जाओ पिकनिक करो, इधर घूमो, पत्नी के ऐसे गहने हो तब सुंदरी लगेगी, पता है पति ऐसा सुंदरा लगता है, मतलब बाहर 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 यहाँ, और मरने के बाद स्वर्ग में अप्सराओं का सुख, उधर भटकाती है, ये अनर्थकारिणी है। सात्विक बुद्धि है, धर्म से नियंत्रित होती है, भोग नियंत्रित करती है, ध्यान भजन और अच्छे रास्ते जाती है दान पुण्य के। तो इसमें भी कई भेद पड़ जाते हैं, भोगदा, धर्मदा, मोक्षदा, प्रसाददा। तो धर्म का आचरण करके भविष्य में सुखी होने वाली हूँ, मोक्षदा, मोक्ष चाहते हैं लेकिन सायुज्य सांबिप्य सालोक्य भाई ईश्वर की निकटता वाला मोक्ष, प्रसाददायक भगवान का ध्यान भजन करके भगवत भाव से भगवत प्रसाद से सुखी रहे। लेकिन अगर सतगुरु मिल गए और यहीं पर ईश्वर साक्षात्कार करना है तो मरने के बाद स्वर्ग का मोक्ष अथवा सामीप्य मुक्ति सायुज्य मुक्ति नहीं, परमात्माकार अर्थात ईश्वर को देने वाली बुद्धि, ईश्वर का ईश्वरत्व है जिससे उस अपने आत्मा को प्रकट करने वाली बुद्धि, ये गुरु की आखिरी कृपा, भगवान की आखिरी कृपा और मांगने वाले की आखिरी पुण्याई और सूझबूझ होती है, तभी ब्राह्मी स्थिति होती है। उसके पहले की और कई स्थितियां होती है, लेकिन अब पहले की कई स्थितियों में घूम घूम के फिर भटक के वहां जाओ अथवा गुरु कृपा से और अपने विवेक से सीधे वहां जाओ। तो वशिष्ठ महाराज जैसे ऊंचे ऋषि हैं और भगवान शंभ सदाशिव जैसे ज्ञान मूर्ति, तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे महादेव, ऐसा कौन सा देव है और उसकी कैसी उपासना है जिससे कलयुग के जीवों का जल्दी मंगल हो और परम मंगल हो, आखिरी प्रकार का मंगल जल्दी हो। वो कौन देव है और उसकी क्या उपासना साधना है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। हे देवादि देव महादेव, आप जैसे ज्ञान मूर्ति भुवन भंग व्यसन से परितृप्त, ये प्रश्न का उत्तर तो आप ही दे सकते हैं। तब भगवान प्रसन्न होकर शिव जी कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, ये कुबेर वरुण वास्तविक में देव नहीं है, इंद्रदेव भी वास्तविक में देव नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस आत्मदेव से ही देव है, उस आत्मदेव की पूजा उपासना जीव को शीघ्र परमात्म तृप्ति से, परमात्म ज्ञान से और परमात्म स्वभाव से जागृत कर देती है। लेकिन जिनकी मति गति उस वास्तविक तात्विक देव तक नहीं जाती, ऐसे लोगों के लिए साकार देव की उपासना कही है। वो देव साकार भी है, निराकार भी है। मनुष्य साकार शरीर में रहता है, साकार इंद्रियों में रहता है, साकार भोगों में जीता है, तो उसको साकार देव की उपासना की आवश्यकता लगी, इसीलिए शिवलिंग आदि की साकार पूजा और निराकार पूजा का विधान है। शिवलिंग में निराकार भावना से भी पूजा की जाती है और शिव मूर्ति में साकार भावना से भी। ऐसे ही कोई मूर्ति में निराकार भाव साकार भावना से पूजा करते, फिर वो साकार मूर्ति तो बाहर होती, पंचभौतिक मूर्ति तो बाहर होती है, आंख भी पंचभौतिक है, आदि भौतिक है, मूर्ति भी आदि भौतिक है, पूजा की चीज भी आदि भौतिक है, लेकिन पूजा करके जब भगवान मेरे सत हैं, चित हैं, सर्वव्यापक हैं, ओम नमः शिवाय अथवा जले विष्णु थले विष्णु, तो उसकी बुद्धि में वो निराकार तत्व चिन्मय तत्व प्रकाशता है, तो सामान्य ऐहिक बुद्धि उसकी प्रज्ञा बन जाती है और प्रज्ञा फिर प्रतिभा के तरफ चलती, और प्रतिभा संसार को खोजने में, संसार की साइंस में आगे बढ़ने में भी प्रतिभा प्रवेश कर लेती है, और मैं कौन हूं और देव क्या है उसमें भी प्रतिभा लगाकर रितम भरा प्रज्ञा बन जाती और परमात्मा की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनो, ये भगवान शंभ सदाशिव वशिष्ठ जी को बता रहे हैं और वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं, ये योग वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं यही प्रसंग। तो आज शिवरात्रि का महापर्व है, आज के दिन उपवास का बड़ा महत्व है, सत्संग का और शिव तत्व के श्रवण का बड़ा भारी महत्व है। और शिव तत्व श्रवण किए बिना आप कितनी भी साधना करो, जब तक ज्ञान सुना नहीं, ज्ञान समझा नहीं, तब तक आपकी जितनी समझ है साधना में वो ही दृढ़ होगी। साधना से कोई छू मंतर नहीं हो जाएगा, ध्यान से, ध्यान से आपकी जो सूझबूझ है, जो धारणा है, मान्यता है, वो दृढ़ होगी। जिस देव के प्रति उस देव की आकृति ध्यान के द्वारा आप प्रकट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान के पहले, इसीलिए तुलसीदास ने कहा, तन सुकाय पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। ज्ञान मार्ग का विचार करना चाहिए। तो भगवान शिव जी दिव्य ज्ञान देते वशिष्ठ जी को और वशिष्ठ जी दिव्य ज्ञान की चर्चा करते भगवान राम के आगे। तो अब शिव जी का बाह्य स्वरूप के अनुसार मैं आपको बताऊं, शिव जी की जटाओं में दूज का चांद है, अर्थात बड़े लोग छोटे का थोड़ा भी प्रकाश हो तो शिरोधारी करते, ये उनका बड़प्पन है। शिवजी मुंडों की माला पहनते हैं, अर्थात ज्ञानवानों का मस्तक शिवजी के लिए आभूषण, ज्ञानवानों की प्रतिभा और रितंभरा प्रज्ञा जिस मस्तक में जगी है, ऐसे लोगों का शिवजी आदर बताते। शिवजी भभूत रमाते हैं, इसके विषय में अलग अलग शास्त्रों में कथाएं हैं कि शिवजी से कभी पूछा किसी ने कि महाराज आप शमशान की भभूत क्यों रमाते हैं, बोले वो मुर्दा धन्य है, जब जाता है तो कईयों को बुलवाता जाता है, राम राम सत है, राम राम सत है, न बोलने वाले न सुनने वाले भी मेरे इष्ट स्वरूप जो रोम रोम में रम रहा है, स्वाभाविक चैतन्य उस राम का भजन करवाते, ऐसे मुर्दे कितने पवित्र हैं कि कामी क्रोधी कुटिल मूढ़ों को भी राम राम कहलवा देते हैं। और शमशान में उनका शरीर जलता है तो भोगियों के मन में भी मुर्दे के शरीर की आग और राख वैराग्य जगा देती है, इसलिए मैं ये राख रमाता हूं। और दूसरी बात, तीसरी बात, ये कथा की विस्तार कथाकार बहुत सुंदर ढंग से करते। तो भस्माले पा शिवजी त्रिपुंड करते, अर्थात तीनों गुणों से पार जाओ, कभी जीवन में सात्विक भाव आएगा, कभी राजस आएगा, कभी निद्रा तामस होगी, ये सब आते जाते रहेंगे और आप इनसे परे हो। त्रिशूल त्रिगुणातीत भव अर्जुना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति में है और ये परिवर्तन प्रकृति में है, उसको जानने वाला शिव स्वरूप अपने आप में टिका रहे। पंचामृत से स्नान क्या है कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच महाभूतों से ये शरीर बना है और ये पांच महाभूतों के सिवाय एक पल भी जी नहीं सकता, वायु के बिना नहीं जी सकते, पृथ्वी या आकाश के बिना ये शरीर कहाँ जिएगा। तो ये स्थूल पांच भूतों का ही ये शरीर है और पांच भूतों में जी रहा है, इस भाव की समझ से पंचामृत से मुझे नहलाना, ये शिव पंचामृत स्नान है। ये जो दस कोस नहीं चल सकते उनके लिए दो फलांग भी चलना अच्छा है, ऐसे ही मुझ वास्तविक शिव की अंतरात्म भाव से उपासना पूजा नहीं कर सकते, उनके लिए शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति आदि की पूजा का विधान है। तो आरंभ में इस प्रकार की पूजा अर्चना करते करते संत का संग मिलेगा, सत्संग में रुचि होगी तो बुद्धि प्रज्ञा बनने लगेगी, और बुद्धि जब प्रज्ञा बनने लगेगी तो ये बातें रुचेगी, और इन बातों के अनुसार थोड़ा अंतर्मुख होगा, थोड़ा और गहरा उतरेगा। तो जैसे हथौड़ी कुंजी ताला खोल सकती है, हथौड़ी ताला तोड़ सकती है, लेकिन कुंजी भी लोहे की हथौड़ी भी लोहे की, दोनों मिलकर कपड़ा नहीं सी सकती। कपड़े सीने के लिए लोहा तो है लेकिन सुई चाहिए, दो कपड़ों को जोड़ने वाली, लोहा सूक्ष्म अवस्था में चाहिए। ऐसे बुद्धि सूक्ष्म होती तो प्रज्ञा बनती है और जीवात्मा के मिलन का काम करती है। श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम, अथवा श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो गिनती। इस प्रकार की साधना में लग गया तो वह बुद्धि प्रज्ञा बनने लग जाती है, और ऐसी प्रज्ञा साधक को जल्दी उन्नत कर देती है। दुनिया में जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो प्रज्ञा के अपराध से, अर्थात प्रज्ञा संपन्न नहीं है, अभी बुद्धि में जीता है। बुद्धि तो वर्तमान में जहाँ सुख मिला वहां दौड़ाएगी, मन के मन इंद्रियों को जहाँ सुख दिखता है वहां मन ले जाएगा, और मन को जहाँ सुख दिखता है वहां बुद्धि को ले जाएगा, और फिर जीव का पतन होता है। जैसे दिया जला और पतंगियों को, जंतुओं को रोशनी का मजा लेने के लिए इंद्रियों ने खींचा, वो मन से उधर उड़े और जल मरे। तो एक जल मरे हैं, दूसरे भी उसी में लगे हैं, अभी उनकी अल्प बुद्धि है, प्रज्ञा नहीं बनी है। ऐसे एक ने लवर लवरी शादी किया, दूसरे ने किया, एक पान मसाला खाता है, दूसरा खाता है, तीसरा खाता है, एक पिक्चर और दारू से बर्बाद हुआ, दूसरे भी हुए, तो उनकी बुद्धि में अभी प्रज्ञा तत्व नहीं आया। इतने इतने डूब के मरे फिर भी चलो यार जो होगा देखा जाएगा, हालात पीले भांग। तो ये जैसे मच्छर अथवा ये पतंगियों की आकर्षणी इंद्रियां उनको ले डूबती है, ऐसे ही सामान्य बुद्धि वाला देखने में, सूंघने में, चखने में, सुनने में फिसल जाता है इंद्रियां उनकी, और मन उसके पीछे और मति खिंच जाती है। अगर अपने जीवन में कोई व्रत है, नियम है, जप है, तो बुद्धि सुदृढ़ होगी, मन को अच्छे रास्ते ले चलने में साथ देगी, बुराई के तरफ से रोक देगी, तो वो प्रतिभा प्रज्ञा बन जाएगी। मन में सौ सौ इच्छाएं आएगी तो क्या जो इच्छा आई वही काम करने लगोगे क्या? सौ सौ इच्छा में से 40% इच्छाएं तो ऐसे तुम काट सकते हो, 100 की कर दो 60। मैं कहानी कहा करता था कि एक तेरा दमदार आदमी था, उसने 100 रुपया उधार लिया। उस जमाने का 100 रुपया मतलब आज के जमाने का 1.25 तोला सोना, 60 रुपये तोला सोना, उस समय 100 रुपया, तो आज का 10,000 समझ लो, 12-15,000 समझ लो। 100 रुपया लिया, वो दुकानदार ने कहा भाई मुझे पता है तू आदमी जरा दबंग है, तू डॉन है, मुझे पता है तू, तेरे से ब्याज में नहीं चाहता हूं, लेकिन मेहरबानी करके 100 दे दे मेरे वापस। तो उसने कहा तुमको 100 तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी एक बात मानो। उसने बोला एक तो क्या मैं 4 बात मानू, तू 100 रुपया मेरे को दे दे, ब्याज नहीं चाहिए। तो उसने बोला 100 की कर दो 60। बनिए ने कहा ठीक है चलो 60 ही दे दे। उस आदमी ने कहा आधा कर दो काट, कितने बचे? की कर दो 60, आधा कर दो काट, तो हो गए 30। 10 देंगे 10 छुड़ाएंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ। तो 100 की 60 आधा काट, 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के हाथ जोड़ेंगे, तो अभी तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे मन में 100 100 हल्के भाव आए या कोई भी विचार आए, लेकिन साधन भजन के समय बैठे हो तो बोले अब 100 100 बातों की 60 कर दे, आधा काट कर दे, 10 बातें तेरी पूरी करेंगे, 10 छुड़ाएंगे, मनीराम 10 के हाथ जोड़ेंगे, अभी तो करने दे। ओ गुरु गीता का, शिव गीता का थोड़ा पाठ करके एक टक देखो और कम से कम 6 मिनट ऐसा एक टक देखते हुए जप करो, फिर 6 मिनट से 10 मिनट करते हो तो और अच्छा। 40 दिन के अंदर तो आपकी भाग्य की रेखाएं बदलने लगेगी, समस्याओं का समाधान आपको दूसरों की मेहरबानी से नहीं होगा, आप अपने उस आत्म ऊर्जा से समस्याओं का समाधान करने में सफल हो जाएंगे। और आगे साधना बढ़ाई तो दूसरों की समस्याओं का समाधान आपके द्वारा होने लगेगा, ऐसी आत्मिक शक्ति के खजाने तुम खोल सकते हो। कबीर जी ने कहा, सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। अगर 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम कोई 40 दिन का नियम करते तो फिर तो कहना ही क्या। और गुरु के द्वारा मंत्र मिल गया तो आदि साधना तो दीक्षा के प्रभाव से आपकी हो गई, और पूर्वकृत पाप और पूर्वकृत गंदी आदतें दोबारा नहीं दोहराएं तो पहले के पाप माफ हो जाते और आप निर्दोष हो जाते। ज्यों ज्यों जब बढ़ेगा त्यों त्यों पाप नष्ट हो जाएगा, लेकिन महापाप है कोई भयंकर। तो आद्य शंकराचार्य भगवान के संप्रदाय में सबसे बड़े भारी विद्वान हो गए विद्यारण्य स्वामी। उनको गुरु मंत्र मिला और गुरु ने कहा कि अनुष्ठान करो, मंत्र में जितने अक्षर उतने लाख जप, उतने हजार, उतने 100 और उतने जप। तो इष्ट मंत्र सिद्ध होता है तो अनिष्ट सब चू हो जाता है, और इष्ट मंत्र सिद्ध होता है तो जिस देव का मंत्र है वो देव प्रकट भी हो जाएगा। तो विद्यारण्य स्वामी ने एक अनुष्ठान किया, 2 3 4 5 6 11 अनुष्ठान हो गए। देखा कि अभी कोई देव प्रकट नहीं हुआ, कुछ चमत्कार नहीं हुआ, ये सब ढकोसला है, मैं ना हका कर इतना फंसा। तो अलग एकांत जगह में जा रहे थे, कुटिया बना के लकड़ी कट्ठी की, और ये धार्मिक पुस्तकें पुस्तकें अग्नि देवता को स्वाहा, पूजा पाठ की सामग्री अग्नि देवता को, माला गौमुखी आदि अग्नि देवता को, अग्नि भभुक भभुक सबको स्वाहा कर रही। इतने में एक दिव्य प्रतिभा संपन्न महिला वहां प्रकट हुई कि ये तुम क्या कर रहे हो। बोले बहन जी, माता जी, ये सब ढकोसला है जब बप। मैंने 11-11 अनुष्ठान किया और मंत्र जाप से कुछ होता नहीं। अब इनको सबको अग्नि में डालकर मैं जाकर प्रचार करूंगा कि समय बर्बाद मत करो, धार्मिक बन के कमाओ खाओ खाओ कमाओ और मौज मजा करो। मैं नास्तिकवाद का प्रचार करूंगा, ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं, मंत्र मंत्र ये सब फालतू है। तो उस देवी ने कहा अच्छा तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पीछे मुड़के भी तो जरा देखो। तो देखा कि आगे जो अग्नि जल रही है, आगे जो अग्नि जल रही है वही पीछे भी भभुक भभुक करके लपटे ले रही है, और उसमें धड़ाक से काला कलू छाया पुरुषाकर समाप्त। दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके 11 भयंकर पुरुष उसमें नष्ट हो गए। चकित हो गया कि ये क्या है। जिस देवी ने मुझे कहा था पीछे मुड़ के देखो, वो देवी कहां गई? जरूर इस रहस्य को वो देवी जानती होगी। देखा तो देवी है नहीं, युवक थे, इधर उधर वन में जरा आपाधापी की। देखा कि ये क्या मैं देख रहा हूं। हे मातेश्वरी, हे देवेश्वरी, हे विश्वेश्वरी, कृपा करो, तुम आई थी अब अदृश्य हो गई हो, वास्तव में तुम कौन हो मैं नहीं जानता हूं, मेरा मार्गदर्शन करो। आकाशवाणी हुई कि तुमने तो धर्म का आश्रय, जप का आश्रय, गुरु आज्ञा का आश्रय छोड़ दिया है, अब तुम अनाथ जाओ, भटको अपनी मनमाना। कई अनाथ भटक रहे हैं और मरने के बाद मां का गर्भ नहीं मिला और गटर में नाली में बह रहे हैं। जाओ जैसा भी करना है, इससे क्या है, सूर्य नहीं है, इसका प्रकाश प्रचार करने से क्या सूर्य का अस्तित्व मिट जाएगा? ईश्वर नहीं है, इसका प्रचार करने से क्या ईश्वर सत्ता और ईश्वर मिट जाएगा? माता जी, ये मैंने क्या देखा कि 11 बड़े भयंकर पुरुष अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। बोले तुम्हारे 11 जन्मों के भयंकर महापातक थे और वो एक एक अनुष्ठान से नष्ट हुए, और 11 अनुष्ठान से तुम्हारे 11 जन्मों की जो भी गंदगी थी, आप थोड़ा सा भी जब करोगे तो सफल हो जाओगे, लेकिन तुम जब मानते ही नहीं तो फिर क्या है। माताजी कृपा करो मार्गदर्शन। बोले मार्गदर्शक गुरु के मंत्र का तुमने अनादर किया, उस गुरु की पूजा प्रार्थना करके उनसे क्षमा याचना करो, और गुरु के स्पर्श अथवा गुरु के दिए हुए मंत्र को और माला को अपना कल्याण करने वाला परम साधन मानकर फिर से करोगे तो तुम्हें सिद्धाई मिलेगी। और उन्होंने किया और इतने बड़े सिद्ध हुए, और उन्होंने ग्रंथ रचा, उस ग्रंथ से मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई। वो ग्रंथ पंचदशी के नाम से 5 और 10 15 अध्याय है। उसमें पंचदशी के 7वें प्रकरण को गुरु जी ने पढ़वाया और मुझे समझाया, जैसे श्री कृष्ण की गीता से अर्जुन को तत्व प्रसाद जा मति मिल गई, ऐसे उस महापुरुष ने जो 11-11 भयंकर उनके काली माए थी जन्मों की नष्ट हुई, और फिर गुरु मंत्र के प्रभाव से और तत्व ज्ञान तत्व प्रसाद जा बुद्धि और उन्होंने ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ पंचदशी के नाम से प्रसिद्ध है। वेदांत के साधक और वेदांत की साधना, ज्ञान मार्ग की साधना करने वाले सभी संत महात्मा और भक्त उस ग्रंथ से परिचित है। विद्यारण्य स्वामी उनका नाम था। तो जप करते और कुछ धड़ाक से हो जाइए नहीं, जप से पहले तो आपने तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और पूर्व कर्मों की शुद्धि होती है, और जब वो कर्जा निपट जाए तब प्लस होगा ना, बैंक बैलेंस कब होगा? मैंने रोज 200-500 हजार रुपया बैंक में दिया, अभी तक मेरा 1 लाख रुपया हुआ नहीं। अरे बुद्धू जी, 3.5 लाख पहले के निकलते थे, वही अभी जमा होने में 25 हजार चाहिए, तेरा प्लस कैसे होगा? पहले माइनस पूरा होगा तब प्लस होगा ना बेटे। ऐसे ही जब से पातक नाशिनी ऊर्जा पैदा होती है, तो आज के दिन किया हुआ जप 10,000 गुना फल देता है। इसलिए आज ओम नमः शिवाय जप करके फिर भ्रू मध्य में ओमकार का जप करें। ओम बहुत बड़ी भारी कमाई कर रहे हो आज, लगे रहो थोड़ी मिनटों के लिए। अब होठों में जपो लेकिन दूसरा न सुने उस ढंग से। ध्यान भजन में जब भी आपकी उबान हो अथवा मन न लगता हो अथवा ध्यान भजन करने बैठे हो उस समय आप दो प्राणायाम ऐसे जरूर कर लो, तो उस ध्यान भजन में बहुत सारे विघ्न मिटेंगे और आपकी मति प्रज्ञा में बदलने में मदद मिलेगी। गहरा श्वास लो, तो लो 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 लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वास गहरा, जितना ज्यादा ले सकते हो, जितना अधिक ले सकते हो, और मन में यही मंत्र दोहराते जाओ, ओम ओम ओम, मैं प्रभु का प्रभु मेरे, ये पक्का निश्चय कर लो। शरीर मरने के बाद भी जो मेरा साथ नहीं छोड़ता वो आत्मा परमात्मा अंतर्यामी ईश्वर मेरे हैं, और उनका स्वभाव ओमकार मंत्र के देवता है ओम। अब कंठ में ओम ओम बोलना है और गर्दन को मैं करता हूं ऐसा करना है, इससे बीमारियां भी दूर होगी और पाप भी दूर होंगे और तुम्हारी साधना में भी रुचि होगी। मैं करता हूं ऐसे करना, फिर से गहरा श्वास। श्वास लेने में कंजूसी नहीं करना, जितना अधिक श्वास भर सकते हो और पेट को अंदर शौच जाने की जगह को सकोड़ लो, उतना ही ये जप अधिक प्रभावशाली, सुखदाई और विघ्नों को हरने वाला, आरोग्य को भरने वाला। लो श्वास, थोड़ा और लो, पेट को अंदर, शौच लेटरिन जाने की जगह को सकोड़ के ऊपर की तरफ, ऐसा रोज करना होगा। लो 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 लो, मन में ये महामंत्र दोहराओ इसी भावना से कि मैं अंतर्यामी प्रभु का हूं, शरीर मरने के बाद भी मेरा अंतर्यामी प्रभु मेरे साथ रहता है, तभी तो स्वर्ग और नरक का पता चलता है। ऐसा करने के बाद आप ये प्रतिज्ञा करके और ओमकार को, गुरुदेव को अथवा इष्ट देव को देखते जाएं एक टक, और कम से कम 6 मिनट दाहे बाहे नीचे ऊपर नहीं, सीधा देखते जाएं और जप करें। आपके जप में और आपकी इस साधना में ऐसी बरकत आएगी कि आपकी जो मति है हल्की ऊंची हो जाएगी, और ऊंची मति होने के बाद सात्विक होगी, सात्विक के बाद वो मति आपकी प्रज्ञा बन जाएगी, और प्रज्ञा के बाद अगर करते ही रहोगे, ध्यान बढ़ाते रहोगे, तो प्रज्ञा फिर आपकी हो जाएगी प्रतिभा, और प्रतिभा हुई और सतगुरु मिले तो महाराज वो प्रतिभा आपकी रितम भरा प्रज्ञा हो जाएगी, अर्थात परमात्मा अंतर्यामी ईश्वर के सामर्थ्य से, स्वभाव से भरी हुई मति हो जाएगी। ये पराकाष्ठा होती है। तो भगवान शिव जी ने वशिष्ठ जी को कहा कि जो सामान्य शुरुआती लोग हैं उनके लिए शिवलिंग की उपासना है और मेरी शिव मूर्ति की उपासना है और देवताओं की उपासना है, लेकिन तुम्हारे जैसे ऋषियों के लिए, तुम्हारे जैसे बुद्धिमानों के लिए अंतर्यामी परमेश्वर देव की उपासना का विधान है। सुख और दुख आए तो सम रहना, ये पंचामृत समान शिव की पूजा है। लाभ हानि मित्र शर्तु शत्रु आना जाना ये सब सपने की नाई बीत जाएगा, यही ज्ञान प्रकाश ही शिव जी को दिया दिखाना है। और चित्त को प्रसन्न रखना यही धूप और दीप है। यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, ये खात बनाने वाले शरीर में भी अगर गुरु का ज्ञान है तो इसी में छुपे हुए परमात्मा ज्ञान का प्रकाश होता है, तो आपकी चरण रज भी भूमि को पावन कर देती है, इतना महान बन जाओगे।